मानव इतिहास की शुरुआत के बारे में जब भी हम चर्चा करते हैं तो दिमाग में अक्सर
आग की खोज या गुफाओं में बने शुरुआती चित्रों की छवियां उभरती हैं।
हाँ बिल्कुल, मतलब हम एक बहुत ही क्रमिक और स्वाभाविक शांतिपूर्ण विकास की कल्पना करते हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज एक बेहद चौंकाने वाला तथ्य ये है कि मानव सभ्यता की जो सबसे पहली मौत दर्ज की गई थी ना,
हाँ,
वो किसी बीमारी या बुढ़ापे की वजह से नहीं हुई थी।
एग्जैक्टली,
वो कोई प्राकृतिक मौत नहीं थी, वो एक हत्या थी।
एक हत्या, बिल्कुल,
और वो भी कोई साधारण हत्या नहीं, बल्कि ईर्ष्या और नफरत में अंधे हुए एक भाई द्वारा दूसरे भाई की जान लेने की घटना।
ये सचमुच एक ऐसा तथ्य है जो इंसान की बुनियादी फितरत पर बहुत गहरे सवाल खड़ा कर देता है। पहली मौत कोई प्राकृतिक घटना न होकर एक जानबूझकर किया गया अपराध थी। ये दिखाता है कि मानव स्वभाव के भीतर जो अंधकार है,
हाँ,
वह सभ्यता के विकास के साथ नहीं आया, बल्कि वो बिल्कुल शुरुआत से ही हमारे भीतर मौजूद था।
सही कहा। और आज की हमारी ये जो पूरी गहन चर्चा है वो इसी आदिम अपराध की गहराई में जाने के बारे में है।
बिल्कुल,
हम रॉबर्ट वेनॉय के ओल्ड टेस्टमेंट हिस्ट्री के लेक्चर्स का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, विशेष रूप से उत्पत्ति के अध्याय 4 और 5 के उस शुरुआती कालखंड का जो केन और हाबिल की इस मशहूर घटना पर केंद्रित है।
और ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम इस विषय को किसी का पक्ष लेते हुए नहीं देख रहे हैं।
हाँ, हमारा उद्देश्य सिर्फ कोई पुरानी कहानी दोहराना नहीं है।
बिल्कुल नहीं,
हम इन प्राचीन ग्रंथों का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं ताकि ये समझ सकें कि मानव मनोविज्ञान, न्याय और बिना किसी लिखित कानून वाले समाज में सही गलत की धारणा कैसे काम करती थी।
तो चलिए इस पूरी घटना के उस बिंदु से शुरुआत करते हैं जिसने इस भयानक नफरत का बीज बोया,
भेंट या जो बलिदान उन्होंने दिया था उस घटना से। हाँ, क्योंकि हत्या रातों रात तो नहीं होती ना। हाबिल जो एक चरवाहा था अपने झुंड के बेहतरीन जानवरों को लेकर आया, और केन जो एक किसान था अपनी जमीन की उपज लेकर आया। लेकिन प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि हाबिल की भेंट स्वीकार कर ली गई और केन की भेंट को पूरी तरह से नकार दिया गया। तो सवाल ये है कि एक किसान की मेहनत में ऐसा क्या गलत था कि उसे अस्वीकार कर दिया गया।
देखिए, इस सवाल ने सदियों से विद्वानों को उलझाए रखा है। वेनॉय के व्याख्यानों में इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है।
अच्छा।
हाँ, एक प्रमुख धर्मशास्त्री हैं बीबी वॉरफील्ड, वो इसे बहुत ही मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं। वो समझाते हैं कि बात इस चीज की नहीं थी कि भेंट में क्या लाया गया था।
तो फिर किस चीज की थी?
बात उस भाव की थी जिसके साथ वो भेंट दी जा रही थी। वॉरफील्ड यहाँ दो बहुत ही अलग धारणाओं का जिक्र करते हैं, एक है प्रायश्चित का भाव और दूसरा है महज एक उपहार या श्रद्धांजलि देने का भाव।
प्रायश्चित और उपहार, ऊपर से देखने में तो दोनों ही आभार व्यक्त करने के तरीके लग सकते हैं ना?
हाँ, लग सकते हैं, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो इनमें एक बहुत बुनियादी अंतर है। वॉरफील्ड का तर्क है कि हाबिल का बलिदान एक गहरे अपराध बोध और प्रायश्चित की भावना से प्रेरित था।
मतलब वो सिर्फ कुछ दे नहीं रहा था।
एग्जैक्टली, वो अपनी कमियों को स्वीकार कर रहा था, क्षमा मांग रहा था, जबकि केन का नजरिया बिल्कुल अलग था। केन की भेंट महज एक औपचारिक उपहार जैसी थी, जैसे कोई सामंत किसी राजा के सामने अपनी फसल का एक हिस्सा सिर्फ इसलिए रख देता है ताकि राजा खुश रहे।
अच्छा, ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। क्या ये वैसा ही है जैसे किसी दोस्त को बिना सोचे समझे बस एक रैंडम गिफ्ट कार्ड थमा देना?
हाँ, कुछ हद तक,
बनाम उसकी किसी बहुत गहरी जरूरत को समझकर कोई बहुत ही व्यक्तिगत और अर्थपूर्ण उपहार देना। मतलब केन वाले मामले में महज खाना पूर्ति है और हाबिल वाले में सच्ची भावना।
ये उदाहरण काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि क्या इंसानों ने खुद पूजा का तरीका ईजाद किया था?
अच्छा, रुको, क्या मतलब है इसका?
यहीं पर जॉन मरे का दृष्टिकोण सामने आता है। मरे कहते हैं कि वॉरफील्ड की बात सही है कि नियत मायने रखती थी, लेकिन सिर्फ नियत ही सब कुछ नहीं थी।
तो और क्या था?
मरे इब्रानियों के एक और प्राचीन लेख का हवाला देते हैं जहां हाबिल के बलिदान को अधिक उत्कृष्ट कहा गया है।
अधिक उत्कृष्ट?
हाँ, इसका मतलब ये हो सकता है कि हाबिल का बलिदान शायद पहले से दिए गए किसी निर्देश के अनुरूप था।
अरे वाह।
अगर हम और पीछे जाएं तो जब पहले इंसानों ने गलती की थी तो उन्हें ढकने के लिए जानवरों की खाल का इस्तेमाल हुआ था, तो मरे का मानना है कि शायद तभी ये स्थापित हो गया था कि प्रायश्चित के लिए रक्त बलिदान जरूरी है।
समझ रही हूँ। इसका मतलब है कि हाबिल ने एक पहले से मौजूद सिस्टम का पालन किया, उसने वही किया जो उसे बताया गया था।
बिल्कुल।
जबकि केन ने सोचा कि वो अपने खुद के नियम बना सकता है, उसने अपनी सुविधा के अनुसार फल और सब्जियां दे दी।
सही कहा, केन का रवैया था कि मैं अपनी शर्तों पर चीजें करूंगा,
और नतीजा ये हुआ कि केन को सिरे से खारिज कर दिया गया। और यहीं से हम उस दूसरे मुख्य विषय पर आते हैं। जब केन की भेंट अस्वीकार होती है तो वो भयंकर क्रोध से भर जाता है,
और तब उसे वो रहस्यमयी चेतावनी दी जाती है।
हाँ, उत्पत्ति के अध्याय 4 की वो पंक्ति, यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा बैठा है, ये सच में बहुत रहस्यमयी भाषाई पहेली है।
बिल्कुल, मूल इब्रानी शब्द के दो बिल्कुल अलग अर्थ निकल सकते हैं। पहला अर्थ है पाप और दूसरा अर्थ है पाप बलि, यानी प्रायश्चित के लिए इस्तेमाल होने वाला जानवर।
तो अगर हम पहला अर्थ लें यानी पाप,
तो यहाँ पाप को एक जंगली जानवर के रूप में चित्रित किया गया है। सोचिए, ये कोई अमूर्त विचार नहीं है बल्कि एक भूखे शिकारी जानवर की तरह है जो दरवाजे पर घात लगाए बैठा है।
बाप रे, ये मानव मनोविज्ञान का कितना डरावना वर्णन है। नोए के लेक्चर में एक दूसरा नजरिया भी तो था।
हाँ, एटकिंसन का विचार।
हाँ, एटकिंसन कहते हैं कि इसका अर्थ पाप बलि होना चाहिए।
सही, उनके अनुसार ये कोई रूपक नहीं था बल्कि केन को बताया जा रहा था कि दरवाजे पर सचमुच एक बलि का जानवर जैसे कोई मेमना मौजूद है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मुझे एटकिंसन के इस विचार पर बहुत आपत्ति है।
अच्छा, क्यों?
मतलब तार्किक रूप से सोचिए, अगर वो सिर्फ एक मेमना था जो दरवाजे पर था तो उस वाक्य का अगला हिस्सा पूरी तरह से अर्थहीन हो जाता है।
उसकी लालसा तेरी ओर होगी वाली बात।
एग्जैक्टली, एक बंधे हुए मेमने की लालसा केन की ओर क्यों होगी? एटकिंसन इसे हाबिल से जोड़ने की कोशिश करते हैं जो व्याकरण के हिसाब से बिल्कुल टूट जाता है।
अब बिल्कुल सही कह रही हैं। भाषा विज्ञान के हिसाब से भी अचानक हाबिल को उस वाक्य में घुसाना बहुत कमजोर तर्क है।
हाँ, कोई तुक्की नहीं बनता।
इसलिए ज्यादातर विशेषज्ञ पहले नजरिए को ही सही मानते हैं कि पाप एक शिकारी जानवर की तरह घात लगाए बैठा है।
और दुखद बात यह है कि केन उस जानवर से, उस पाप से हार जाता है।
वो अपने भाई की हत्या कर देता है।
हाँ, और इसके बाद जो सामना और इनकार का क्षण आता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है।
जब उससे पूछा जाता है कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है।
हाँ, वो कोई बहाना नहीं बनाता, वो सीधे सीधे झूठ बोलता है। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ?
अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये इंसान के पतन की बहुत खौफनाक यात्रा है। पहले इंसानों ने सिर्फ आज्ञा ना मानने की गलती की थी और उन्होंने डर के मारे खुद को छिपा लिया था।
उन्होंने दोष किसी और पर मढ़ दिया था।
बिल्कुल, लेकिन केन की पीढ़ी तक आते आते ये सीधे तौर पर हत्या और अहंकार से भरे झूठ में बदल गया। कोई बचतावा नहीं था।
और इसी वजह से मानव इतिहास का पहला सीधा श्राप दिया जाता है।
आदम के समय तो सिर्फ जमीन की उपज मुश्किल हुई थी।
हाँ, लेकिन केन के लिए जमीन कुछ भी उपज नहीं देगी, उसे जीवन भर एक भगोड़ा बनकर रहना पड़ेगा।
और यहीं से हम अपनी चर्चा के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जहां सबसे ज्यादा तार्किक उलझने और सवाल सामने आते हैं।
अरे हाँ, वो लॉजिस्टिक्स वाले सवाल। सबसे आम सवाल जो हर कोई पूछता है, केन को अपनी पत्नी कहां से मिली?
बिल्कुल, अगर दुनिया में सिर्फ पहले माता पिता और उनके बेटे ही थे तो केन निर्वासित होकर पत्नी कहां से लाता है?
तो वैनोय का विश्लेषण इस पर क्या कहता है?
वैनोय इसका बहुत ही गणितीय उत्तर देते हैं। देखिए, आदम 930 वर्ष जिया। 130वें वर्ष में उनके अगले बेटे सेथच का जन्म हुआ। इन 100 से ज्यादा वर्षों के अंतराल में बहुत कुछ हुआ होगा।
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन 100 वर्षों में कई पीढ़ियां आ चुकी थी?
बिल्कुल, शुरुआती दौर में इंसानी शरीर अपनी परिपूर्ण अवस्था में रहा होगा, कोई जेनेटिक समस्याएं नहीं थी, तो घातांकीय वृद्धि या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के हिसाब से आसानी से 4 या 5 पीढ़ियां विकसित हो सकती थीं।
यानी दर्जनों या सैकड़ों लोग हो सकते थे।
हाँ, जिनमें आपस में विवाह हुआ तो केन ने किसी दूर के वंशज से विवाह किया होगा।
ये तार्किक लगता है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज आती है जो मुझे बहुत हैरान करती है।
क्या?
केन द्वारा एक शहर का निर्माण। वो नूद नाम के इलाके में जाता है और एक शहर बसाता है। मतलब एक भगोड़ा शहर क्यों बसाएगा?
ये जल प्रलय से पूर्व की तकनीक को दर्शाता है। एक बहुत बड़ा विरोधाभास है।
सच में मुझे लगता है कि ये शहर किसी सभ्यता के विकास के लिए नहीं बल्कि खौफ की वजह से बसाया गया था। केन डरा हुआ था कि कोई उसे मार देगा।
बिल्कुल, और यहीं पर ईश्वरीय सुरक्षा और प्रतिशोध का मुद्दा आता है। केन को डर था कि जो कोई उसे पाएगा मार डालेगा।
तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब एक तरफ परमेश्वर केन को इतना भयानक श्राप देते हैं और दूसरी तरफ उसे इंसानों के स्वाभाविक प्रतिशोध से बचाने के लिए एक चिन्ह देते हैं जो सबसे मजबूत सुरक्षा कवच था।
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, उस समय न्याय व्यवस्था कैसे काम करती थी?
हाँ, ऐसा क्यों किया गया?
देखिए, उस समय मृत्युदंड का कोई नियम या कानून नहीं था। अगर किसी इंसान को केन को मारने की छूट मिल जाती तो क्या होता?
तो खून के बदले खून की एक कभी ना खत्म होने वाली चेन शुरू हो जाती।
एग्जैक्टली, इसीलिए वो चिन्ह दिया गया जिसका अर्थ था कि जो केन को मारेगा उस पर 7 गुना ईश्वरीय बदला लिया जाएगा।
मतलब न्याय पूरी तरह से ईश्वरीय हस्तक्षेप पर निर्भर था।
हाँ, इंसानों को व्यक्तिगत प्रतिशोध की अनुमति नहीं थी।
ये पूरी चर्चा वाकई बहुत गहरी है। मतलब हमने सिर्फ एक हत्या की कहानी से शुरुआत की और हम इरादे, भाषा के जटिल अर्थों,
पाप बनाम पाप बली वाला हिस्सा,
हाँ,
और शुरुआती मानव सभ्यता के विस्तार तक पहुँच गए।
ये विश्लेषण हमें दिखाता है कि शुरुआती समाज में सही गलत कैसे तय होता था।
बिल्कुल।
और इसी के साथ हम इस चर्चा के अंत में आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जिस पर शायद हर किसी को सोचना चाहिए।
बिल्कुल।
जब न्याय की जिम्मेदारी किसी इंसानी कानून के बजाय पूरी तरह से ईश्वरीय हस्तक्षेप पर छोड़ दी जाए,
हाँ,
और मानव स्वभाव को बिना किसी रोक टोक के विकसित होने दिया जाए, तो समाज किस दिशा में जाता है?
बहुत गहरा सवाल है।
क्या कानून के अभाव में इंसान का असली और सबसे खतरनाक रूप सामने आता है? क्या वो दरवाजे पर बैठा पाप रूपी जानवर आज भी हमारे समाज में हमारी चेतना के दरवाजे पर बैठा है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस प्राचीन दुनिया से लेकर आज की आधुनिक सभ्यता तक प्रासंगिक है।